हरे कृष्ण। तो अभी इस क्लास की श्रृंखला के आज आखिरी दो दिन बचे, आज और कल। कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, वो दिन है जब सनातन गोस्वामी वापस भगवान के धाम लौटे। उन्होंने अपना देह त्याग किया था गोवर्धन के पास, चकलेश्वर महादेव के पास, और बाद में उनकी समाधि यहाँ पर वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर के पास में बनाई गई, जहाँ पर अभी भी है। सबको सुनाई पड़ रहा है स्पष्ट आवाज़? क्लियर है? पीछे सुनाई पड़ रहा है आवाज़? क्लियर है, स्पष्ट है? एक वैष्णव, उसका आविर्भाव और उसका तिरुभाव दोनों ही दिव्य होते हैं। जैसे आज हमारे प्रभुपाद जी के एक सीनियर डिसाइपल ग्रेस सुरभि प्रभु, आज उन्होंने अपना देह त्याग किया सवेरे करीब 2:50 पे। तो मुझे याद है जब मैं पहले इस्कॉन में आया था मुंबई में 1976 में, तो प्रभु जी आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो है वो चीफ आर्किटेक्ट थे। उनको प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप राधा श्याम सुंदर के लिए मंदिर बनाओ वृंदावन में, और राधा रस बिहारी के लिए जुहू बम्बई में। तो जो भी आप देख रहे हैं ये राधा श्याम सुंदर मंदिर यहाँ पर, या राधा रस बिहारी मंदिर बम्बई में, प्रभुपाद समाधि, इन सब के पीछे सुरभि प्रभु का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया था कि आप यहाँ पर कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए मंदिर बनाओ, घर बनाओ भगवान के लिए, भगवान आपके लिए ऊपर घर बनाएंगे। और प्रभुपाद के वचन को भगवान ने पूरा किया। तो आज से 4 पहले जब रामनवमी के समय, जब कृष्ण बलराम मंदिर का 40 पूरे हुए, उस समय सुरभि प्रभु भी यहाँ पर थे, ब्रह्मानंद प्रभु भी थे, और उन्होंने बहुत सुंदर बताया इस मंदिर के निर्माण के बारे में, कैसे निर्माण किया गया प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। हमें बहुत ध्यानपूर्वक भक्तों के संग को ग्रहण करना चाहिए, स्पेशली जो श्रील प्रभुपाद के सीनियर शिष्य हैं। आज हम जिनको अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, पता नहीं वो अगले वर्ष होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। सर्वकालम कृतम मन्ये, भीष्मदेव बोलते हैं राजा युधिष्ठिर को कि सब कुछ काल के वश में है। कौन जीव कहाँ पर होगा, किसको किस समय भगवान बुला लेंगे, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, गुरुदेव के गाइडेंस में, वैष्णव के निर्देश में, अगर हम भगवान की थोड़ी भी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान जरूर हमें अंत समय मदद करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास जिस भावना से आता है, समर्पित होता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तो जो भक्त सुरभि प्रभु की तरह, या ब्रह्मानंद प्रभु की तरह, या उसके इन दोनों के बीच में कूर्म रूप प्रभु भी चले गए, इसी कुछ ही एक दो महीने में हम देख रहे हैं कि तीन महान वैष्णव चले गए। तो कूर्मरूप प्रभु गायों की सेवा करते थे, गो रक्षा कर रहे थे। जो गाय बहुत ही निग्लेक्टेड हैं, जिस गाय को कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिनको चोट लग गई है, उनको उनकी देखभाल करते थे। अब भगवान ने उनको पुरुषोत्तम महीने में एकादशी के दिन वापस अपने अपनी लीला में बुला लिया। इटर्नल जो कृष्ण की जो गोचारण लीला है उसमें बुला लिया। तो भगवान की सेवा जो है वो शाश्वत धन है। हम थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करते हैं उसका लाभ इटर्नल है, शाश्वत है। गीता में भगवान कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं, नेहा भी क्रमणश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसका अनुवाद है कि भगवान कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई नुकसान नहीं होता, अगर थोड़ी सी भी सेवा की है तो उसका लाभ शाश्वत है। थोड़ी सी भी अगर सेवा की है तो उसका लाभ शाश्वत होता है। इस भौतिक दुनिया में आप कोई धन कमाते हैं या कुछ भौतिक डिग्रीज प्राप्त करते हैं तो वो जो लाभ है वो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। आपके बैंक बैलेंस 10 करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन अगले जन्म में आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। आप अगर अगले जन्म में जाके बोलते हैं मेरा नाम ये था, मेरा बैंक अकाउंट है, तो बैंक वाले बोलेंगे भाग जाओ यहाँ से। नहीं, कितना परसेंट अलाउड होता है रामचरण प्रभु, कितना परसेंटेज अलाउड होता है अगले जन्म में ले जाना? कुछ कुछ प्रतिशत नहीं। मेरे पास 10 लाख है तो 1 लाख अगले जन्म तक जाता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी उस गति को प्राप्त करें जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो गति है श्री गौरंग महाप्रभु के चरण कमल। और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करने का तरीका है चैतन्य चरितामृत पढ़ना। चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। इस इंस्ट्रक्शन को सीरियसली गंभीरता से पालन करना। हर भक्त के हृदय में भगवान है, हर एक को प्रणाम करना, हर एक को पूजनीय मानना, चाहे वो जवान हो, वृद्ध हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में हो, भारत से हो, अमेरिका से हो, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए हर जीव को प्रणाम करना है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान कृष्ण। और अभी इसी एक दो महीने में तीन महान वैष्णव चले गए, तो मैं सोच रहा था भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं। कूर्मरूप प्रभु जी भी गए, तभी मैं वृंदावन में था, अभी आज भी यहाँ हूँ। भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि सावधान रहो, तुम्हारा नंबर भी कभी भी आ सकता है, किसी भी समय भगवान आपको बुला सकते हैं। यस, जब मैंने एक भक्त को ऐसा बताया तो बोले प्रभु जी आप डराते क्यों हो, हाँ आप क्यों बोल रहे हैं मृत्यु आने वाली है, हाँ हमको आनंद से रहने दो। नहीं, मृत्यु का समाचार भक्त के हृदय में डर नहीं पैदा करता। मृत्यु से भक्त को लगता है कि भगवान मुझे अपने चरण कमल में बुला रहे हैं। जैसे एक बिल्ली, जब बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे को बहुत डर लगता है। जब बिल्ली चूहे के पास पहुंचता है चूहा भागने का प्रयास करता है, और उसके मुंह में जब होता है तड़प रहा होता है। उसके लिए बिल्ली का मुंह यानी साक्षात काल, मृत्यु। लेकिन वही मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को उठाती, उसके बच्चे को आनंद लगता है। सेम बिल्ली है, सेम मुंह है, लेकिन फर्क है भावना का। जो अभक्त हैं वो चूहे की तरह हैं, जब कृष्ण आते हैं काल के रूप में अभक्त को डर लगता है, वो प्रयास करते हैं, डॉक्टर साहब मदद करो, मेरी मृत्यु को पोस्टपोन कर दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 1 साल और बढ़ा दो। डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं भी अपनी भी नहीं बढ़ा सकता। नहीं, कोई लोग बोलते हैं अगर मैं च्यवनप्राश खाऊंगा तो मृत्यु नहीं होगी। च्यवनप्राश, अगर आप रोज़ च्यवनप्राश खाते हैं, झंडू, वैद्यनाथ और डाबर तीनों मिक्स करके भी, तो भी मृत्यु हो जाएगी। च्यवनप्राश किसने शुरू किया, कौन ऋषि थे? च्यवन ऋषि, वृंदावन विहारी प्रभु के दोस्त थे च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि कहाँ हैं अभी, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो भक्त को मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु का मतलब क्या है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना। जैसे आज मैं वृंदावन में हूँ, कल वृंदावन, परसों मैं नोएडा जा रहा हूँ, वहाँ भी इस्कॉन का सेंटर है, उसके बाद पंजाबी बाग जा रहा हूँ, वहाँ भी सेंटर है, फिर कलकत्ता जा रहा हूँ। तो हम एक सेंटर में सेवा कर रहे हैं, दूसरे सेंटर में सेवा कर रहे हैं, क्या फ़र्क है? ऐसे मृत्यु का मतलब है खाली एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना और कपड़े बदली कर देना, कपड़े बदल देना, वासा से जीर्णान यथा विहाय, यू नो, सेम सिम सेट, सिम कार्ड सेम है, खाली हैंडसेट बदली कर देना। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु में सोचना चाहिए गोपीनाथ, श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन मेरे को बुला रहे हैं, कम बैक होम, बैक टू गॉड। और भगवान के बड़े बड़े भक्तों को यही गति होती है। प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, एक भक्त पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं लेकिन अंत में वृंदावन में आते हैं। वे सूर्य भी प्रभु इंडोनेशिया में थे और 15 दिन पहले मालूम पड़ा उनको कैंसर हुआ, तो कभी भी मृत्यु हो सकती थी। सिर्फ 3 दिन पहले प्रभु जी यहाँ पर आए, सिर्फ 3 दिन पहले अब भगवान ने अरेंज किया, यहाँ पर आ गए ठीक ठाक सही सलामत, और आज भगवान के अरेंजमेंट से पवित्र समय उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो भक्त, भक्त का जीवन हमेशा आनंद का जीवन है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार। एक भक्त बोलते हैं मुझे मारो या रक्षा करो, जो आपकी इच्छा। प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक साधु जा रहे थे और बड़े सन्यासी थे, उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी थे, और रास्ते में जा रहे थे और सबको अलग अलग आशीर्वाद दे रहे थे। वो आगे जा रहे थे और पहले उन्होंने ब्रह्मचारी को देखा, मुनि पुत्र, उनको देखकर कहा मुनि पुत्र मा जीव, मुनि पुत्र तुम जीवित मत रहो, मर जाओ, ये आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण, बड़ा विचित्र आशीर्वाद है, नहीं आपको कोई दे तो बड़ा बुरा लगेगा, नहीं वृंदावन विहारी, मैं आगे बोलूँगा नहीं। तो और आगे गए और फिर उन्होंने देखा एक राजकुमार को, वो राजकुमार बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं, बड़े एलिशान महलों में इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो साधु ने आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीव भव, आपको लंबी आयु मिले, आपकी मृत्यु नहीं हो। फिर थोड़ी दूर और आगे गए और फिर उन्होंने एक कसाई को देखा जो जानवरों की हत्या कर रहे थे। तो कसाई को देखकर उन्होंने कहा मा जीव मा मर, आप जीवित भी मत रहो, मरो भी मत। और लास्ट में उन्होंने एक वैष्णव को देखा जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर रहे हैं। उसके देख के उन्होंने कहा जीवो वा मरो वा, आप जीवित रहो या मरो, आपके लिए कोई अंतर नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद महाराज जी के साथी ने प्रश्न पूछा, महाराज आपको तो समान दृष्टि होनी चाहिए, आप सबको एक ही आशीर्वाद देना चाहिए, आपने लोगों को अलग अलग आशीर्वाद कैसे दिया? तो महाराज ने जवाब दिया कि पहला जो व्यक्ति था वो ब्रह्मचारी, वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, जो भोजन मिल जाए वो स्वीकार कर रहे हैं, जो सेवा बताई जाए सहन करना है, जो भी ऑर्डर टेंपल कमांडर का हो, बड़ा तपस्वी कठिन जीवन है। इसलिए क्योंकि वो इतना कठिनाई ले रहे हैं, मरने के बाद उसको गोलोक जाना है, इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया माँ जीव जल्दी मृत्यु हो जाए, मतलब जो उसका टिकट है आरएसी है कंफर्म हो जाए जल्दी भगवत धाम में। फिर मैंने राजपुत्र, ये राजा का पुत्र है, अभी तो बहुत इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बहुत मजे में है, लेकिन मरने के बाद इसको भयानक सजा होने वाली, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि माँ चिरंजीव हो, आपको लंबी आयु मिले, आपकी मृत्यु नहीं हो। वो कसाई जो जानवरों को मार रहा है उसका जीवन अभी भी खराब है, और मरने के बाद तो वो सारे जानवर, जो जो जानवरों को उसने मारा है वो बदला लेंगे और उसका वध करेंगे। इसीलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि जीवित भी मत रहो, मरो भी मत। और एक वैष्णव सन्यासी जो हरि कथा में लगे हैं, जो हरि का नाम प्रचार कर रहे हैं, वो जीवित समय क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मरने के बाद क्या होगा? वो जहाँ भी जाएंगे वो कीर्तन करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है हरिदास ठाकुर के बारे में, उनकी समाधि में जगन्नाथपुरी में, He reasons ill who says that Vaishnavas die. When thou art still living in sound, Vaishnavas die to live, and while living spread the holy name around. जो ये कहता है कि वैष्णव की मृत्यु हो गई वो गलत कह रहा है। वैष्णव की मृत्यु नहीं होती, अपने ध्वनि के रूप में, अपने शब्द ब्रह्म के रूप में, भगवान के मैसेज संदेश के रूप में वो हमेशा रहते, और जब तक वो जीवित हैं तब वो भ्रमण करके प्रचार करते हैं, और मृत्यु के बाद भी अपने वाणी के रूप में रहते हैं। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि कैसे भगवान कृष्ण की कृपा से इतने इतने महान वैष्णव को भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ साथ दुख भी होता है। जब हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा खुशी हुई, और दुख भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई और विलाप भी करने लगे। क्यों, कौन बताएगा? यस, हाँ, दुख इस बात का है कि उनका संग नहीं मिलेगा, और खुशी किस बात की है? हाँ, वो भगवान के धाम चलेगा। तो हम लोग 2 मिनट आंख बंद करके श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय कृष्ण बलराम से प्रार्थना करें। सुरभि प्रभु की जय। आज मैं चैतन्य चरितामृत से एक भाग ले रहा हूँ जो अभिधेय के बारे में। अभी तक हम जो 2 दिन से चर्चा कर रहे थे वो संबंध ज्ञान था। भक्ति में 3 तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध ज्ञान है। आज जो हम भाग ले रहे हैं वो चैतन्य चरितामृत के 22वें अध्याय से है, और हम शुरू कर रहे हैं पहले श्लोक से। जिनके पास किताब है आप किताब में देख सकते हैं या मोबाइल में, तो अगर किसी के पास चैतन्य चरितामृत हिंदी में नहीं है, अगर आप चाहें तो हमारे पास कुछ सेट उपलब्ध हैं जो डिस्काउंट प्राइस में, कम कीमत में हैं। जिनको चाहिए हो वो वृंदावन बिहारी प्रभु या रामशरण प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि हर डिवोटी के घर में चैतन्य चरितामृत सेट होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे, अगर सारे पुस्तकें दुनिया के खो गए, मेडिकल पुस्तक, इंजीनियरिंग पुस्तक, तो भी कुछ नुकसान नहीं है, अगर ये तीन पुस्तक रह जाएं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरित, अगर तीन नहीं रहे तो दो रहने चाहिए, भागवतम और चैतन्य चरित, और दो नहीं रहते, अगर एक भी रहे तो वो चैतन्य चरितामृत। ये एक पुस्तक है जिसमें सारा ज्ञान और सारे भक्ति प्राप्त हो सके। 22nd chapter, 1st verse, भाग 5। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवं कलाव्याप्यति गूढेयं भक्ति भक्तिर्येन प्रकाशिता। इसका हिंदी में अनुवाद है, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। बोलिए, वे दिव्य करुणा के सागर हैं, यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गूह्य है, फिर भी उन्होंने इस कलयुग में उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। चैतन्य महाप्रभु का विशेष कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कलयुग जैसे युग में भी सबसे ऊंचा कृष्ण प्रेम प्रदान किया। नमो महावदन्याय, सब बोलिए, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर त्विषे नमः। अभी तक हमने संबंध ज्ञान कहा है, अब अभिधेय का सुनिए। जहाँ हैते पाए कृष्ण कृष्ण प्रेम धन, ये जो अभिधेय ज्ञान है इसको सुनने से कृष्ण और कृष्ण के प्रेम के धन की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कृष्ण सारे कारणों के कारण है। वही कृष्ण के बहुत सारे विस्तार स्वरूप हैं। विस्तार स्वरूप दो प्रकार के हैं, एक है स्व अंश और एक है विभिन्न अंश। कौन कौन से हैं? पहला है स्व अंश, विभिन्न अंश। स्व अंश में कौन से आते हैं? भगवान के अवतार राम, नरसिंह, वराह, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब भगवान के एक्सपांशन, जो भगवान के ही समान शक्तिमान है, इसको कहते हैं स्व अंश। और विभिन्न अंश कौन है? जीवात्मा। विभिन्न अंश बहुत छोटे से जीवात्मा हैं। हम भगवान के अंश हैं लेकिन हम भगवान के बराबर नहीं बन सकते। जैसे मायावादी बोलते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन वैष्णव जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं और दास ही बन सकते हैं। विभिन्न अंश भी दो प्रकार के हैं, एक है नित्य मुक्त और दूसरा है नित्य बद्ध। कौन कौन से हैं? नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कौन है? नित्य मुक्त कौन है, कौन बताएगा? हाँ, हाथ ऊपर करिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नित्य मुक्त वो हैं जो हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं, जो कभी भगवान की सेवा त्यागते नहीं हैं। जब धरती पे आते भी हैं तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं और फिर बाद में वापस चले जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ऐसे भक्त। दूसरा है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध मतलब जो बहुत समय से बंधे हुए हैं। अभी एक भक्त ने मेरे से प्रश्न पूछा कि आप कहते हैं कि हम सब नित्य बद्ध हैं, इसका मतलब क्या हम हमेशा बंधे रहेंगे? अगर हम हमेशा नित्य बद्ध हैं तो फिर जप करने का क्या फायदा हो? हमेशा बंधन में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि नित्य बद्ध का अर्थ है कि इतने सालों से बंधे हुए हैं कि उसका हिसाब रखना मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग होता है कि ऑलमोस्ट हमेशा हमेशा से बंधे हुए। तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ये दो प्रकार के जीवात्मा। जो जीव बद्ध है उसको तीन प्रकार के दुख मिलते हैं। सेई दोषे माया पिशाचादि दंड करे, आध्यात्मिक आदि तापत्राए तारे जारी मारे। तीन, जो नित्य बद्ध है उसको माया देवी अपने त्रिशूल से मारती है। देखे दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है। वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदेविक। आध्यात्मिक दुख का मतलब क्या है? अपने मन की बीमारियां, शरीर की बीमारियां, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। अधिभौतिक क्या है? दूसरे प्राणी तकलीफ देते हैं। नहीं, कई प्रवचन बहुत लंबा हो जाते हैं कभी कभी रात को मच्छर काटते हैं। नहीं, हम लोग गुड नाइट लगाते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हम ऑल आउट लगाते हैं और वो ऑल इन हो जाते हैं। मच्छर, सांप, शेर, कई पॉलिटिशियन भी तकलीफ देते हैं, कई बार घर के रिश्तेदार तकलीफ देते हैं। ये सब आता है अधिभौतिक में। और तीसरा क्या है? आधिदैविक। आधिदैविक का मतलब क्या है? संसार की विपत्ति, जैसे भूकंप, अभी नेपाल में भूकंप आया था, बाढ़, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी। तो ये तीन प्रकार के ताप हैं, ये कौन दे रहे? माया पिशाचिनी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में बोलते हैं, आज हम लोग गाएंगे, कि हे जीव जागो जागो, माया की गोद में मत सो, कोट निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। कौन सा भजन है, किसी को याद है? कौन सा हम लोग गाएं भजन? सब लोग गाना चाहेंगे, हम लोग शॉर्ट में गाएंगे। जीव जागो गौरा चंद्र बोले, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले, भजी बबोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजी भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे, तुमार लोईते आमी होइनो अवतार, तुम आमी बिना बंधु आर के आचे तुमार, जीव जागो गौराचंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले एनेचे औषधि माया नाशिबार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी भगति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया भग से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया जीव जागो जीव जागो गौरचंद्र बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। आप मायापुर में गए होंगे तो मायापुर में एक स्थान है गोद्रुम द्वीप, है ना, गंगा जी के उस पार, और वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, और वहीं पर बैठकर अपने घर से भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन लिखे थे। तो ये भजन विशेष करके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भजन में भक्ति विनोद ठाकुर सब बद्ध जीवों को बोल रहे हैं, जीव जागो जीव जागो। यहाँ जागने का मतलब क्या है? आप बोले प्रभु जी हम तो जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। जागने का मतलब है आध्यात्मिक चेतना में जागृति होना। हम भूल गए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जागृति का मतलब है ये जान लेना कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कत निद्रा जाओ माया, बहुत देर से सोए हैं, कई जन्मों से, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे नित्य बद्ध, बहुत सालों से हम सोए हैं, और कहाँ सोए हैं? पिशाचीर कोले, पिशाची, पिशाची की सुनने राक्षसी, डायन, जैसे पूतना पिशाची नहीं थी। अगर किसी को बताया जाए कि प्रभु फ्री कमरा मिल रहा है, पूतना की गोद में सोना है, तो कौन सुना चाहेगा, बहुत डेंजरस है। तो माया देवी ये पिशाचिनी है और हम उसकी शरण में आ गए। भक्ति का मतलब है माया की शरण को छोड़ करके कृष्ण की शरण में आना। माया देवी भी हमें आकर्षित करती है, आ जाओ बेटे मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको शाश्वत सुख दूंगी। लेकिन जब हम उसकी शरण में आते हैं तो त्रिशूल लेके और पीटती है, और फिर हम इतने मूर्ख हैं कि माया देवी को छोड़ना नहीं चाहते। हम जन्मनी जन्मनी माया सेवा, वी आर अटैच्ड। तो वैष्णव आकर हमें उठाते हैं, जीव जागो, वेकअप वेकअप, उठो। भक्तिनो ठाकुर बोलते हैं, भजीब बोलिया ऐसे संसारे भीतरे। जब हम माँ के गर्भ में थे इस तरह से बैठे हुए 9 महीने के लिए, तब हमने भगवान को वचन दिया था, हम में से हर एक ने भगवान को बोला था कि मैं बाहर निकलूँगा, मैं जप करूँगा, भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर निकलते ही क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब भक्ति भूल गए सब। सब घर वाले बोलते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना, बच्चा रोता है, माँ को तकलीफ हो रहा है, माँ भी रो रही है, सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। ये दुनिया में क्या हैप्पी है। हाँ, लेकिन अगर वो बच्चा कृष्ण भक्त बन जाता है तो माँ ने जो कष्ट उठाया है वो सफल हो जाता है। अगर बच्चा भक्त नहीं बने तो फिर वो व्यर्थ का परिश्रम है। फिर आगे बताते हैं, भूलिया रही ल तुम्हें अविद्या र भारे। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण तुम अपने आप को भूल गए हो। तुम्हारे लोईते आमी होई नु अवतार, आमी बिना बंधुवार के आचे तुम्हार। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि महाप्रभु का संदेश है, महाप्रभु के शब्द हैं, तुम्हारे लोईते आमी, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। आमी बिना बंधु आर के आचे तुम्हार, बिना महाप्रभु के, बिना नित्यानंद प्रभु के, बिना गुरुदेव के, प्रभुपाद के, हमारा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वो है जो हमको हृदय में स्थित परमात्मा से जुड़े, वही माता है, वही पिता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एने ची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। मैं औषधि लेकर आया हूँ, दवाई, ये मेडिसिन। दवाई क्या है, हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दवाई फ्री ऑफ चार्ज है, और ये दवाई ज़्यादा डोज लेने पे नुकसान नहीं है। भौतिक दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कभी कभी पेन किलर 1000-2000 रुपये का एक इंजेक्शन होता है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र फ्री ऑफ चार्ज है। तो 16 इंजेक्शन रोज़ सुबह लगा देने चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द होता है, फिर हम क्यों लगवाते हैं इंजेक्शन, दर्द हो रहा है तो नहीं लगाना चाहिए, हम लगाते हैं क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। ऐसे कभी कभी हमें हरि नाम लेने में थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, कभी कभी हरि नाम लेने में टेस्ट नहीं आता, हरि नाम लेते हम बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं दवाई है, एक्सेप्ट द मेडिसिन। और लास्ट लाइन में बोलते हैं, भगति विनोद प्रभु चरणे पुड़िया, सही हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मैं भगवान के चरणों में गिर के भीख मांगता हूँ कि ये महामंत्र को मैं ग्रहण कर सकूँ। तो यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्त चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम सब माया की गोद में लेटे हुए हैं, और फिर हम बाहर कैसे निकलते हैं वो बताया गया आगे। ज्ञान कर्म और योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की प्राप्ति होती है सिर्फ भक्ति के द्वारा। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा जाना जाता हूँ, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान ये नहीं बोलते ज्ञानी माम जानाति, साइंटिस्ट माम जानाति, पॉलिटिशियन माम जानाति, सिर्फ भक्ति। चैतन्य लीला में कौन सी कहानी है कि एक भक्त थे जो बहुत अनपढ़ थे, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई, जो ठीक से पढ़ते नहीं थे। साउथ इंडिया में, यस, श्रीरंगम मंदिर में एक भक्त थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे और सब लोग मजाक कर रहे थे, अरे क्या पढ़ रहे हो मूर्ख, तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं है। लेकिन वो बोले, नहीं, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, सारे 18 अध्याय। वो ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, स्वयं गीता के लेखक आए, बोले क्या पढ़ रहे हो आप ये? बोले मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है। तो महाप्रभु बोले, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो? बोले जब मैं यह गीता पढ़ता हूं तो मुझे साक्षात दिखाई पड़ता है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। वो भगवान जो ब्रह्मा और शिव जी के मास्टर हैं, जिनकी आज्ञा से इंद्र बरसात करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु चलती है, जिनकी आज्ञा से अग्नि प्रकाश करती है, और वो भगवान एक नौकर बन गए, एक ड्राइवर बन गए हैं अपने भक्त के लिए। इसीलिए ये देख के मेरे आंखों से आंसू आते। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले तुम्हें गीता पाठेर अधिकारी, आप गीता का पाठ करने के लिए अच्छे अधिकारी हो। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको गुरु और भगवान में पूरा विश्वास है उसको शास्त्रों का सारा अर्थ प्रकाशित हो जाता है हृदय से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं, कर्म ज्ञान योग के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। भक्ति को छोड़कर दूसरे योग का अभ्यास करना ऐसे है कि जैसे कोई अनाज है, जैसे गेहूं होता है, चावल वो छिलके में होता है, मान लो उसमें से दाना निकाल दिया अनाज का और फिर छिलके को आप पीट रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बिना भक्ति के और सारे साधन विफल हैं। भक्त्या माम अभी जानाती, सिर्फ भक्ति है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। फिर उसका उद्धार कैसे होगा जीव का, आप मेरे पीछे बोलिए, सीक्रेट है। ताटे कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, जो दो चीज करता है, एक तो कृष्ण की सेवा में लगता है और गुरु की सेवा में लगता है, उससे क्या होगा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण, माया जाल छूटे, ये माया का जो रोप है जो गले में बांध दिया गया, हमको कुत्ते की तरह बांध के रखा है माया ने, वो रस्सी से, भौतिक इच्छाओं की रस्सी है, एक गुरु आते हैं वो माया की रस्सी को काट देते हैं और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। गुरु का मतलब वो व्यक्ति है जो हमें भगवान की सेवा में सहायता करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते, वो यही कहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गॉड हूँ, भगवान, जीओडी गॉड, तो बन जाता है डीओजी डॉग। तो जीव को कभी भगवान नहीं बन सकता। चारी वर्णाश्रम कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते रौरव पड़ी मजे। अगर कोई चार वर्ण और आश्रम में रहता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम है, और चार वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब ड्यूटीज को परफेक्टली करता है लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वो रौरव नरक में गिर जाता है। अगर कोई बोलेगा प्रभु जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति नहीं की तो अपने आप उसका जीवन बेकार हो जाता है। मनुष्य जन्म पाइय राधा कृष्ण न भजिय, आगे जानिय शुनिय विष खाइ। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान राधा श्याम सुंदर की सेवा नहीं की तो जहर खाने के बराबर। अब चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहा कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत से है। आप देखेंगे ये श्लोक कहाँ पे मिलता है आपको, हर समय बैक टू गॉडहेड मैगजीन में, इसका मीनिंग क्या है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कौन बताएगा? यस माता जी, इसमें से कोई क्या मीनिंग हुआ इसका? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण माइक नहीं है, कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, प्रभु जी इसकी तरफ से कहा, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, मतलब जहां पर कृष्ण का नाम है वहां पर अंधकार नहीं। देखो जैसे अंधेरा का समय है लेकिन सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे हमारे हृदय में कितना भी गंदगी हो, जब हम बीड बैग में हाथ डाल के ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। कृष्ण तोमार है यदि बोले एक बार, अगर कोई एक बार भी बोलता है कृष्ण मैं आपका हूँ, कृष्ण आई एम योर्स, कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ, मायाबद्ध है ते कृष्ण तारे कोरे पार, हाँ जैसे जीव बोलता है मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, भगवान उसको माया से पार कर देते हैं। और नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण से है, सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। किसी को मालूम है ये श्लोक का क्या बैकग्राउंड है, का मीनिंग क्या है? हाँ बहुत सुंदर पॉइंट बताया शुभ कृष्ण प्रभु ने कि विभीषण भगवान राम की शरण में आते हैं। रामायण में कहानी आती है कि विभीषण जो है वो रावण के भाई थे, रावण का परिवार बड़ा दिव्य था, रावण प्रभु, उसके भाई का नाम कुंभकर्ण और एक और भाई थे खर और दूषण, और उनकी बहन का नाम था शूर्पणखा देवी, है ना। बहुत दिव्य परिवार था लेकिन एक व्यक्ति था जो उसमें फिट नहीं हो रहा था, वो विभीषण, उतना अच्छा नहीं था, मतलब असुर की दृष्टि से, है ना, असुर क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, है ना। तो विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे, उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया कि तुम अग्नि से खेल रहे हो, सीता को अपने पास रखना ऐसे कि जैसे कपड़े में आग लेके जाना है, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो और बड़े खुशी के साथ अपने राज्य का भोग करो। उस समय रावण के पुत्र जिसका नाम था इंद्रजीत मेघनाथ, वो बहुत क्रोधित हो गए और विभीषण को डांटने लगे कि तुम हमारी तरफ से होकर शत्रु का साइड ले रहे हो, इस तरह बहुत कड़वे शब्द बोले। और विभीषण ने निश्चय किया कि अब मैं लंका छोड़ के इसको ज्वाइन करता हूँ, मतलब भगवान राम की पार्टी को ज्वाइन करता हूँ। इसका मतलब कृष्ण की पार्टी राम की पार्टी एक ही है। प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान राम के पास बहुत सारे वानर थे मदद करने के लिए, हनुमान जी, सुग्रीव और कौन थे, नल नील जाम्बवंत सुषेण। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे डिसाइपल ग्रैंड डिसाइपल, वो भी बंदर की तरह, और प्रभुपाद जी को हम थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं, कभी बंदर तकलीफ भी देते हैं लेकिन प्रभुपाद बहुत दयालु हैं। तो विभीषण ने निश्चय किया कि मैं अब सब कुछ छोड़ के भगवान राम की शरण में जाना चाहता हूँ, और उन्होंने अपने साथ 5 लोगों को लिया और श्रीलंका से समुद्र पार करते हुए रामेश्वरम आ गए। इधर हनुमान जी और सारे वानर समुद्र के किनारे खड़े थे, अचानक किसी ने देखा राक्षस, वो देखो ऊपर राक्षस है, और वो उनको मारने के ऊपर तुले हुए थे। इसका वध कर देना चाहिए, ये रावण का भेजा हुआ है। उस समय विभीषण ने आकाश से जवाब दिया, रुक जाओ, मैं राक्षस हूं लेकिन अब प्रभु राम की शरण में आया, आप मुझे भगवान राम के पास ले चलो, मैं उनकी सेवा में लगना चाहता हूं। तो सारे वानर उनको भगवान राम के पास ले गए। भगवान राम बोले पहले कि मैं पहले वानरों से डिस्कस करता हूं। भगवान राम ने सारे वानरों की कमेटी बुलाई, TMC VMC वानर काउंसलिंग मैनेजमेंट कमेटी, यू नो, सबको साथ में बुलाया। उसमें कौन कौन थे वो कमेटी में? सुग्रीव तो टेंपल प्रेसिडेंट थे, और जाम्बवंत, और हनुमान, और नल नील, और अंगद, और सुषेण। तो सबसे भगवान ने पूछा, आप बताओ मेरा आपका मत क्या है। भगवान राम एक अच्छे लीडर थे, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो सबॉर्डिनेट है, जो उनके अधीन है, उनसे मत पूछते थे। पहले सुग्रीव, प्रभु आप बताओ। सुग्रीव बोले, खतरनाक, ये खतरनाक व्यक्ति है, अभी ये उधर छोड़ के इधर आया है, हो सकता है इधर छोड़ के वापस उधर चला जाए, ये जासूस, ये शायद पता लगाने के लिए आया है कि सारे वानरों की सेना कैसे आयोजित की गई है, और समय आने पर ये सारे रहस्य जाकर प्रभु राम को बता सकता है। फिर नल नील से पूछा गया, सुषेण से पूछा गया, किसी एक ने बोला पहले इसको सेवा देनी चाहिए, नहीं तो देखना चाहिए साउंड सिस्टम में कैसा व्यवहार करता है, इसका बिहेवियर देखना चाहिए, कुछ चोरी तो नहीं करता है, महाप्रसाद तो नहीं ले रहा स्टॉल से ज़्यादा, यू नो, इसका बिहेवियर देखना चाहिए, और अगर ये ठीक लगे तो इसको रखना चाहिए। अंत में भगवान ने किससे पूछा? हनुमान जी से। हनुमान जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? हनुमान जी ने बोला कि इसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, तुरंत, कोई इसका वेटिंग पीरियड नहीं, कोई वेटी है नहीं, कोई रूल नहीं, सीधा उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इनको ध्यान से परखा है, मैंने इनका व्यवहार ठीक से देखा है, इनका बोलने का ढंग, इनके शरीर की हाल चाल, क्योंकि एक जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक से ऑब्जर्व करते हो, उसके चाल ढाल से, उसके मुख से भी पता चलता है कि उसके भावना क्या है, नहीं? अगर कोई चोरी करने आया है तो उसके फेस से पता चल जाता है, उसके मुंह में एक डर होता है, हर चोर को थोड़ा डर लगता है, यू नो, इवन महाप्रसाद भी आप चुरा रहे हो तो उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है, नहीं? तो इसीलिए मैंने बड़े ध्यान से देखा है, इसको तुरंत हमारी सेना में ले जाना चाहिए। भगवान राम ने सारे बंदरों के बारे में पूछ लिया, अंत में बोले, अब मेरा निर्णय सुनो, मैं हनुमान जी को जानता हूँ, मैं हनुमान को अब सॉरी मैं विभीषण को जानता हूँ, मैं विभीषण को अपनी सेवा में नियुक्त कर रहा हूँ, ये भगवान का डिसीजन था। फिर भी सुग्रीव बोले, नहीं नहीं प्रभु, ये बहुत खतरनाक है, हो सकता है जासूस हो, इसको लेना खतरे से खाली नहीं है। इवन भगवान का डिसीजन होने के बाद भी सुग्रीव के मन में थोड़ा सा डाउट था, कभी कभी मैनेजमेंट में ऐसा हो जाता है, बहुत डाउट आ जाते हैं ना, दूध से जला छाछ को फूके, है ना, उसको डर लग रहा। तो भगवान राम बोले, सुग्रीव क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते? मैं अपनी अंगुली के नोक से पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता हूं, जस्ट पूरा ब्रह्मांड चला गया, दिल्ली, बंबई, अमेरिका, लंदन, स्वर्ग, नरक, सारे लैपटॉप्स, सारे मोबाइल्स, सारे ब्रिजेस, सारे बिल्डिंग्स, सारे मार्केट्स, सारे समुद्र, नदी, पर्वत, सब फ्लैट कर दो एक क्षण में, और अगले क्षण में फिर से निर्माण कर सकते। देखिए अभी एक मंदिर बनाने में यहाँ पे कितना संघर्ष होता है, अभी थोड़ा एक्सटेंशन हो रहा है, उसको कितने महीने लग रहे हैं, लेकिन भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, जैसे वो इच्छा करते हैं वो हो जाता है। बाइबिल में कहा गया, गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वॉज क्रिएशन, बस भगवान की इच्छा से ही सब होता है। मेरा यह वचन है आज जो हमने पढ़ा, सकृत एव प्रपन्न तवास्मी इति याचते, जो एक बार भी कहता है हे राम, बोलिए या हे राधा श्याम सुंदर, हे गौर निताई, हे कृष्ण बलराम, मैं आपकी शरण में आया। अगर कोई एक बार भी कहता सच्चे दिल से, भगवान बोलते हैं मैं उसको कभी नहीं त्यागूंगा। अगर दुर्दैव से, माया के प्रभाव से अगर कोई भक्त कृष्ण भक्ति को त्याग भी देता है तो भगवान उसको फिर से खींच कर ले आते, ये मेरा वचन। और हमने देखा है प्रभुपाद की लीला में एक बहुत बड़े भक्त रहे जिनका नाम था हयग्रीव प्रभु। आपने नाम सुना हयग्रीव प्रभु? प्रभुपाद जी के इंग्लिश एडिटर थे, भगवद गीता एज इट इज जो ट्रांसलेट की गई थी, हयग्रीव प्रभु का मुख्य योगदान था उसमें। तो प्रभुपाद की बहुत सेवा की उन्होंने। फिर जब प्रभुपाद भारत में आए तो हयग्रीव प्रभु भी भारत में कुछ समय प्रभुपाद के साथ वृंदावन में थे, लेकिन माया के प्रभाव से कुछ समय के लिए हयग्रीव प्रभु अलग हो गए। जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा, प्रभुपाद लेटर में बोले, माय डियर हयग्रीव, बिकॉज यू हैव वंस चैंटेड द होली नेम ऑफ कृष्णा इन वृंदावन, कृष्णा विल डेफिनेटली ब्रिंग यू बैक टू हिज लोटस फीट। आपने एक बार वृंदावन में हरे कृष्ण महामंत्र सच्चे दिल से जप किया है, इसीलिए कृष्ण आपको जल्दी से ले आएंगे। और ऐसा ही हुआ। ये लेटर के कुछ साल बाद प्रभुपाद धरती छोड़ के चले गए, लेकिन 10 साल बाद 1987 में हयग्रीव प्रभु मुंबई में थे और तब उनको पता चला उनको कैंसर हो गया। उनके परम मित्र थे राधानाथ स्वामी महाराज और उनकी सहायता से फिर से इस्कॉन में आए। फिर से भक्तों से दोस्ती हो गई और सारे भक्त उनको पूरा समय कथा सुनाते। अपने आखिरी दिनों में वो अमेरिका में न्यू वृंदावन में थे और वहाँ भक्तों से गिरे हुए उनके आंखों में आंसू होते। बोलते मेरा एक ही दुख है, माई ओनली रिग्रेट इज दैट आई कुड नॉट सर्व श्रील प्रभुपाद मिशन एज मच एज आई शुड हैव। जितना मुझे प्रभुपाद की सेवा करनी थी उतना मैं कर नहीं पाया। और वो बहुत नम्रता से सब भक्तों को प्रणाम कर रहे थे, सारे भक्तों के संग में कीर्तन की आवाज़ सुनते हुए वापस भगवत धाम चले गए। तो कोई भी जिसने भक्ति की है अगर उसका पतन भी हो जाता है तो भगवान यहाँ बता रहे हैं मैं उसको वापस ले आता हूँ। कभी कभी हमारी टेंडेंसी है कोई भक्त का पतन होता है तो हम निंदा करने लगते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान की आंखों में वो भक्त कितना प्रिय है ये हम नहीं जानते। उसकी गलती भी हुई है भगवान ठीक करेंगे। और बच्चा कई बार गलती करे तो भी माता पिता तो उसको त्यागते नहीं हैं। ऐसे ही भगवान राम यहाँ बोल रहे हैं कि जो एक बार भी मेरी शरण में आ गया है मैं इसको कभी नहीं त्यागता। अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कोई प्रश्न है किसी को अभी तक जो एक घंटा हमने चर्चा की उस पर? सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है? ठीक है, अभी हम 10-15 मिनट और चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर एक माला जप करके फिर अंत करेंगे। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, बोलिए, सुबुद्धि यदि है गाढ़ भक्ति योगे तबे कृष्णेर भजे। इसका मतलब क्या है कि जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भुक्ति चाहते हैं, भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा, राजा बनने की इच्छा, इंद्र तृप्ति प्राप्त करने की भुक्ति। दूसरा है मुक्ति, मुक्ति का मतलब है भगवान में लीन होने की इच्छा। सिद्धि, सिद्धि मतलब अष्ट सिद्धि। से पहले जमाने में योगी होते थे अनिमा महिमा प्राप्ति ईशिता। प्राप्ति सिद्धि मतलब ऐसे हाथ करो और वो चीज आ जाए। जैसे यहाँ बैठे बैठे योगी हाथ करते और अब मेरे को फल मिल जाए, अनार काबुल से, अफगानिस्तान से, और तुरंत वो फल वहाँ आ जाता है। उस जमाने में वहाँ के अनार बहुत मशहूर थे। आज आप ऐसे हाथ करोगे अफगानिस्तान के तो शायद आपको बॉम्ब मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि टेररिस्ट इलाके। लेकिन पहले ज़माने में काबुल के फ्रूट्स बहुत फेमस थे, आज भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत मिलते हैं अफगानिस्तान से। देखिए प्राप्ति सिद्धि है, इशिता वशिता, किसी दूसरे को वश में करना, दूसरे के मन को बात जानना, लेकिन ये सब भी भक्ति में बाधाएं हैं। चैतन्य आप रिजेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यह है, गाढ़ भक्ति योगे कृष्णेर भजे, कृष्ण का भजन करते हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसका मतलब क्या है, अकाम कोई अकाम है मतलब कोई इच्छा नहीं, सर्व काम मतलब सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब इदम देही 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 पूरा चेकलिस्ट चाहिए सर्व काम। और तीसरा है मोक्ष काम, तीव्रेन भक्ति योगेन, जब ये प्रेम भक्ति में लगते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन न मागीते कृष्ण दारे देन स्वचरण। अन्य कामी कोई दूसरी चीजों की इच्छा कर रहा है और कृष्ण का भजन कर रहा है तो कृष्ण उसको भौतिक चीज नहीं देंगे, उसको अपने चरण कमल देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा पिताजी के पास जाता है, बोलता है मुझे जहर चाहिए, तो पिताजी नहीं देंगे। अगर वो बच्चा दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार बोलेगा ठीक है ले लो जहर, जितना लेना ले लो, बिल भरो और बाद में खाओ, मुझे क्या लेना देना। तो देवी देवता ऐसे हैं, जो आप मांगोगे वो दे देंगे, आप पूजा करो उनको प्रसन्न करो भौतिक फल मिले। लेकिन कृष्ण एक माता पिता की तरह है, माता पिता अपने संतान को वही चीज़ देंगे जो उसके लिए अच्छा है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं अगले श्लोक में, कृष्ण कहे बोलिए आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ा मूर्ख। इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण कहे, कृष्ण बोल रहे हैं आमा भजे मेरा भजन कर रहा है और क्या मांग रहा है, विशेष अमृत को छोड़ के क्या ले रहा है वो विष, ये क्या है बड़ा मूर्ख है। लेकिन कृष्ण क्या सोचते हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं आगे, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दीब। इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण बोल रहे हैं आमी विज्ञ मैं तो बुद्धिमान हूँ, ए मूर्ख ये क्या है मूर्ख है, विषय के न दीवा मैं उसको विषय नहीं दूंगा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई ब, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने चरण का अमृत दूंगा और वो संसारी सुख को भूल जाएगा। और कौन सा उदाहरण है शास्त्र में, कोई व्यक्ति भौतिक चीजों के लिए पूजा करता है और फिर भगवान के दर्शन होने पे भगवान को बोलता है मुझे भौतिक चीज नहीं चाहिए, रोमारा उसका श्लोक मेरे पीछे बोलिए, स्थाना बिलासी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्त्य देव मुनिन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, स्थाना बिलासी तपसी स्थितो हम मैं भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता था। ध्रुव महाराज क्या चाहते थे, वो सोचते थे मुझे ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा ऊंचा, ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा ऊंचा फल मिले। लेकिन जब भगवान, वो राजा बनना चाहते थे, ब्रह्मा से भी ऊंचा पोस्ट चाहते थे, लेकिन अब भगवान के दर्शन होने बोले मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, भौतिक सुख धन पोजिशन ये सब कांच के टुकड़े के समान, अब मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे रत्न मिल गया, तब मैं और कुछ नहीं चाहता, स्वामी कृतार्थ उसमें। संसार भ्रमिते को न भाग्य के हो तरे नदीर प्रवाहे जे न काश्च लागे तीरे। ये संसार में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं उसकी स्थिति ऐसे है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में फेंक दिया गया समुद्र में, और क्या चांस है कि वो टुकड़ा लहरों से घूमते घूमते किनारे पे आ जाए, बहुत दुर्लभ है। ऐसे जीव अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहे हैं, किसी का सौभाग्य होता है तो उसको भक्तों का संग मिलता है। अब हम किनारे के पास में ही हैं इसलिए हमें और कहीं नहीं जाना है। कौन भाग्यकारो संसार छनमुख है साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजे। जिसके पर भगवान की कृपा होती है वो व्यक्ति को साधु का संग मिलता है और साधु संग से कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिकाय आपने। अगर कृष्ण किसी पे कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उसको ज्ञान देते हैं। दो रूप से हेल्प करते हैं, अंदर से परमात्मा और बाहर से गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो भी परमात्मा का ही एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होए, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए छय। साधु संगे कृष्ण भक्ति, अगर साधु के संग में आता है तो कृष्ण भक्ति करते हैं। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती है, फिर क्या होता है, भक्ति फल प्रेम है, तो प्रेम फल मिलता है संसार जाए छय, संसार का जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाता। महत कृपा बिना को न कर्मे भक्ति नए, फिर से महत कृपा बिना को न कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार ना ही छय। इसका अनुवाद है कि शुद्ध भक्ति कृपा के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, एक वैष्णव की कृपा से ही भक्ति मिलती। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीति पारो तुम्हारा शक्ति आचे, हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाए तव पाछे पाछे। यही बात यहाँ बताई कि कृष्ण जो है एक शुद्ध भक्त की प्रॉपर्टी है। अगर आप कृष्ण के पास जाते हो मुझे आपकी कृपा चाहिए, कृष्ण बोलेंगे मैं नहीं देता। अरे भगवान आप तो प्रोड्यूसर हो, आपकी कृपा, भगवान बोलते हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ लेकिन मेरे रिटेल दुकानों पे जाना होगा, फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान फैक्ट्री में माल नहीं मिलता, कपड़ा दुकानों पे जाना। तो प्रभुपाद एजेंट हैं और प्रभुपाद की कृपा से उनके डिसाइपल्स भी एजेंट हैं और कृष्ण भक्ति बांट रहे हैं। आपको जितना चाहिए ले लो, कैसे लेना है, जोर से पुकार के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महात्मा की कृपा से ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं कोट कर रहे हैं। नैश्यम मतिस्तव उर क्रमांगिम स्पृशनार्थ पगमो यदर्थ मही यशम पद रजोभिषेकम निष्किंचनाम न वृणित यावत। जब तक एक महात्मा पुरुष के चरणों की धूल नहीं मिलती, जब तक हम अभिषेक नहीं करते वैष्णव के चरण धूल से, तब तक हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। जड़ भरत बोलते हैं राजा रघुघ्न को, तपस्या से कोई अग्नि में बैठ जाए मई के महीने में, सर्दी में बद्रीनाथ में जाए ठंडी में, और कोई सारे गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य करे, सारे सन्यासी के कर्तव्य करे, तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही प्राप्त। और लास्ट लाइन है, साधु संग सर्वशास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। इसका अनुवाद है कि एक क्षण भी, लव होता है सेकंड का 11वां हिस्सा, उतनी देर के लिए भी सच्चे साधु का संग मिल जाए तो सब सिद्धियां मिल जाए। रागे श्लोक है शिव जी का, शिव जी बोल रहे हैं कि तुल्यानाम तुल्यान लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानम किमुताशिष। कि अगर एक तराजू के ऊपर स्वर्ग का सुख रखा जाए, मुक्ति भी रखी जाए, और दूसरी तरफ एक सच्चे साधु का संग रखा जाए, तो साधु संग की महिमा ज़्यादा। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों का संग मिलता है। तो जितना भी संग मिल रहा है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी 20 मिनट बचे हैं, कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट प्रश्न के लिए दे सकते हैं। कल सबको अच्छा लगा जप करना? एक माला जप करें फिर बाद में कीर्तन, कि पहले कीर्तन बाद में जप? पहले जप, जब थोड़ा डिफिकल्ट है वो पहले कर लेना। अच्छा, सब लोग साथ में करेंगे जैसे कल किया था, सब लोग या अलग अलग करना? अच्छा, साथ में, तो मेरे साथ सब लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।